सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं मुख्य विषय के अंतर्गत आप सबसे सामाजिक विषमता, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। एक खबर जो अखबारों में नहीं है, किसी अखबार में हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रेडियो न्यूज़ में थी, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। वो ये थी कि हर घर जल अभियान चल रहा है, मिशन चल रहा है कि हर घर नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। दूरदर्शन पर आप देखते हैं कि इसका एड भी आता है। तो गोवा हमारे देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां हर घर जल पहुंच गया है। राज्यों में गोवा और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दादरा नगर हवेली, ये दो तथ्य हैं जो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सफलता को हासिल करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो वहां की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रहा, यानी कि पंचायतों का रहा है। पंचायतों ने बहुत जबरदस्त रूप से इसमें काम किया। तो हम समझ सकते हैं कि जो ग्रास रूट के लेवल पर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो हमारे देश में कितना जबरदस्त परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण है, आप इसका इस्तेमाल पंचायती राज्य पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक घटना पिछले 3-4 दिनों से लगभग चल रही थी लेकिन वो परिपक्व नहीं हुई थी। देखिए, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि मैं जब खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी घटना का चयन करता हूं या किसी खबर को लेता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि आज घटना आई और मुझे आज ही ले लेनी चाहिए। मैं थोड़ा वेट करता हूं, अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है तब तो मैं ले लूंगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि नहीं, इसे थोड़ा पकने देना चाहिए। देखते हैं ये क्या रूप लेती है, कितना परिपक्व होती है, जो मीडिया है इस घटना के को किस तरीके से लेता है, फिर मैं अनुमान लगाता हूं और फिर आप लोगों तक पहुंचाता हूं। इसी तरह की एक घटना है कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, जानते हैं आप इसके बारे में, वहां एक चीनी पोत पहुंच गया जिसे आप जहाज कह लीजिए, पानी का जहाज। इसका नाम है युआन वांग फाइव, जहाज का नाम है युआन वांग फाइव, राइट। ये चीन में पहुंच गया, चीन के हम्बनटोटा बंदरगाह पर। चीन का यह कहना है कि हमारा यह जो जहाज है, जो पोत है, ये बेसिकली हाईटेक अनुसंधान के लिए है, यानी कि हम समुद्र का कुछ अनुसंधान करना चाहते हैं इसलिए हमने ये जहाज भेजा है। लेकिन दुनिया का यह कहना है कि भाई अगर हाईटेक जहाज है तो इसमें सैटेलाइट क्यों है, एंटीना क्यों है, रडार से ये लैस क्यों है, क्योंकि ये तो अनुसंधान की जरूरतें की चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इसके आधार पर बकायदे आप आसपास के क्षेत्र पर निगरानी रख सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं। और भारत का यह मानना है कि इस पोत के जरिए जो चीन है ओडिशा तक नजर रख सकता है, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि यह पोत एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक खतरा या चुनौती के रूप में मौजूद है। यह स्थिति है। श्रीलंका का यह कहना है कि यह शांति अभियान का एक हिस्सा है, लेकिन आप जानते हैं कि फिलहाल जो श्रीलंका है उसकी स्थिति बहुत बुरी है और चीन को वो सीधे सीधे नकारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो चीन है वो इतना शक्तिशाली है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वहां अगर श्रीलंका ऋण के लिए अप्लाई करता है तो उसे रोक सकता है कि इसे ऋण न दिया जाए, और सपोर्ट करने पर वह ऋण दिला भी सकता है। इसीलिए श्रीलंका अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो सीधे सीधे चीन का विरोध कर सकते, तो ये उसकी मजबूरी है। हमारी क्या मजबूरी है? हमारी मजबूरी यह है, आप देखिए कि चीन के साथ हमारे संबंध तनावपूर्ण है। बॉर्डर एरिया में नॉर्थ ईस्ट साइड में देखिए कि लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये एक फिर से जहाज आ गया है तो इसने तनाव पैदा कर दिया है। लेकिन क्या हम चीन से अपने संबंध खराब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी चीन की मजबूरी की बात आपसे कही, वो मजबूरी हमें समझना होगा। और यदि हम श्रीलंका से अपने संबंध खराब कर लेंगे तो उससे हासिल क्या होगा? स्थितियां और बदतर होंगी। लेकिन अब देखते हैं कि स्थिति कहां तक आगे जाती है। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक को आप थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझें, क्योंकि इसका संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से है और भारत चीन संबंधों से भी है। दोस्तों एक खबर जो कल दूरदर्शन न्यूज में भी विस्तार से थी और इस पर दूरदर्शन पर बहस भी कराई गई थी और रेडियो खबर में भी है और आज के अखबारों में भी है, वो है जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची बनाई जानी है और उस मतदाता सूची के बनाने के साथ ही एक और घोषणा की गई है और वो ये है कि ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी तो नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जैसे प्रवासी कामगार हैं, मजदूर हैं, दूसरे राज्यों के कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर में जाकर के काम कर रहे हैं, वे भी मतदान कर सकेंगे। और इसके आधार पर जो मतदाता सूची है उसमें लगभग 25 लाख नए मतदाता जुड़ जाएंगे। जैसे ये घोषणा हुई तो जम्मू कश्मीर में जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इसका जबरदस्त रूप से विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत है, इसके ऐसा करके जो सरकार है वो चीजें अपने पक्ष में करना चाह रही है। कुछ लोगों ने तो बहुत ही अलार्मिंग, आप ये कह लीजिए कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण घोषणाएं भी कर दी हैं जिन्हें राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से बेहतर नहीं माना जा सकता। वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए वास्तविक स्थिति यह है कि जो चुनाव आयोग ने यह बात कही है कि वहां जो राज्य के निवासी नहीं है वे भी मतदान कर सकेंगे, ये कोई जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं है, पूरे देश में यही होता है। हम लोग पहले छत्तीसगढ़ में थे तो वहां मतदान करते थे, इसके बाद हम लोग दिल्ली चले गए तो हम लोग वहां मतदान करने लगे और इसके बाद अब भोपाल में है तो भोपाल में मतदान कर रहे हैं। बस यही है कि हम जहां मतदान कर रहे थे वहां से हमारा नाम कट जाना चाहिए, तो हम तो पूरे देश के नागरिक हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये क्यों है? दरअसल बात यह है कि जब वहां 370 लागू था, अनुच्छेद 370 आपको मालूम है, उस समय जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहां ये व्यवस्था थी उस समय, लेकिन अब तो नहीं है। अब तो अनुच्छेद 370 हटा लिया गया है, 35A हटा लिया गया है, तो अब उसी स्थिति की अगर वो कल्पना कर रहे हैं राजनीतिक दल तो साफ है कि वो वस्तु स्थिति को पचा नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब तो जम्मू कश्मीर राज्य का, अब तो जम्मू कश्मीर हमारे राष्ट्र का उसी तरह से अभिन्न हिस्सा है जैसे कि दूसरे राज्य है, बात खत्म हो गई। तो दोस्तों चूंकि ये चुनाव लोकतंत्र से जुड़ी हुई बात है तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आगे इस पर और एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स भी आए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और मुख्य विषय के तहत मैंने सामाजिक विषमता की बात आप सबसे कही थी। दोस्तों जब सामाजिक विषमता की हम बात करते हैं, भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, इतना वक्त नहीं है कि मैं इस विषय पर पूरी तरह से आप सबसे बात कर पाऊंगा, लेकिन अभी राजस्थान में जो एक घटना घटी है उसके केंद्र में यह है कि किस तरह से एक दलित समुदाय का जो बालक है स्कूल में पानी पी लेता है और फिर उससे मारपीट की जाती है, ये एक घटना है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो जाती है, शायद कुछ इस तरह की घटना है। खैर घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार अखबारों में आती रहती है अलग अलग संदर्भों में, यानी कि हम ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं अभी भी वहां जो दलित वर्ग है उनके प्रति जो सामाजिक दृष्टि है वो बेहतर नहीं है। देखिए मैंने नाम दिया है सामाजिक विषमता, हम सामाजिक विषमता की बात कर रहे हैं और ये जो सामाजिक विषमता भारत में जो आई है इस तरीके की, वो कहां से आई है? वो जाति प्रथा से आई हुई व्यवस्था है, जाति प्रथा। कुछ वर्ग के लोगों को हमने निम्न श्रेणी में रख दिया और लगातार वो निम्न श्रेणी में ही बने रहे क्योंकि उन्हें अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति, सामाजिक अनुमति नहीं थी, फलस्वरूप वो लगातार पीछे चलते चले गए। दोस्तों मैं इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आपको खासकर कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी बताना चाहूंगा, ये एक तरीके से मास्टर की है, कुंजी है, इसके आधार पर आप बहुत से सामाजिक विश्लेषण कर सकते हैं। मैं सरल से सरल रूप में आपके सामने यदि बात रखूं तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज के लिए जो अर्थव्यवस्था होती है या किसी भी राष्ट्र के लिए अर्थव्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है और जिस देश की जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जिस समाज की जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जिसको उन्होंने उत्पादन उत्पादक संबंध नाम दिया था फिलोसॉफिकल वर्ड में, बाकी जो दूसरी चीजें होंगी वो उसी के अनुकूल होंगी। तो चलिए हम इसे अभी किनारे कर देते हैं, अर्थव्यवस्था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जो दलित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसे व्यवसाय बदलने की इजाजत नहीं थी, तो फलस्वरूप वो वही काम करते रहे। व्यवसाय तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात हो गई ना, तो आर्थिक रूप से आगे आने का उन्हें मौका मिला ही नहीं। मतलब ऐसी स्थिति नहीं आई कि वे आर्थिक रूप से अपने को संपन्न बना पाते, और यदि वे आर्थिक रूप से विपन्न ही रहे तो सीधी सी बात है कि सामाजिक दृष्टिकोण जो होना चाहिए था समानता का उनके प्रति, वो नहीं हो पाया। आप देखिए कि हमारे भक्ति काल में क्या किया गया। भक्ति काल में तो जो हमारे भक्त कवि हुए हैं, जो संत कवि हुए हैं, उन्होंने सीधे सीधे जाति प्रथा का जबरदस्त रूप से खंडन किया और सीधे सीधे बात कही कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। और उस समय हमारे कितने भक्त और संत कवि हुए हैं जो जाति की दृष्टि से निम्न वर्ग में थे, लेकिन आज हम उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह हुआ कि भक्ति काल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जो सिस्टम इसको खंडित करने के लिए कोशिश करता, तो यह भी स्थिति बनी रही और आज तक यह स्थिति चली आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि शहरों में यह स्थिति नहीं है। आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या रेस्टोरेंट वाले से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे किचन में जो बना रहा है वो किस जाति का है? आप नहीं पूछते। यानी कि जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, उस बदले हुए स्वरूप ने अपने आप स्थिति को बदल दिया। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि बात को आप समझ सकें और फिर इस जो मैं आपको मास्टर की कह रहा हूं इसका इस्तेमाल आप दूसरे विश्लेषणों में भी कर सकें। क्योंकि जब आप विश्लेषण करें, देखिए इस तरह के प्रश्न अगर मेंस में पूछे जाते हैं तो बड़े आसान से प्रश्न होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है वो यह कि आपके उत्तर में कितनी चमक है, उसमें कितनी बौद्धिकता है, तर्क की कितनी ताकत है, और तर्क की ताकत इसी तरीके से आती है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो मास्टर की मैंने आपको दी है आप प्लीज इसका इस्तेमाल करें, यदि अवसर हुआ तो बाद में भी हम इस पर और आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं साहिल प्रताप और अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, नमस्कार।